ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लू से बचाव की तैयारियों और उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
नमस्कार। लू से बचाव की तैयारियों और उपायों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमए के सदस्य राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।
शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में। अभी प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए कल ही इस बारे में एक बैठक करी है और शायद ये सही समय भी था कि जब इस तरह की तैयारियों के बारे में चर्चा की जाए और हम जो आपदा आने से पहले के जो उपाय किए जा सकते हैं उसकी तैयारियां करें। तो कल की बैठक के बारे में किस किस बिंदुओं पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या विचार रखे उसके बारे में जरूर बताएं।
जैसे कि आपने कहा है कि नीतीश जी ने इसके ऊपर मीटिंग की है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में भीषण गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है। इसी की चिंता करते हुए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 तारीख को एक मीटिंग अपने ऑफिस में रखी थी और उसमें जो है उन्होंने, जिसमें एनडीएमए के मेंबर एचओडी और डीजी आईएमडी उपस्थित थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री डॉक्टर मिश्रा साहब थे और भी कई अथॉरिटीज उसमें थी, होम सेक्रेटरी साहब थे उसमें। और उसमें जो मेन चर्चा थी तो देखा गया उसमें कि कैसा मौसम रहेगा, गर्मी का तापमान आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। और बेसिक जो प्रधानमंत्री जी ने दो बात कही है उसमें था हॉस्पिटल ऑपरेशन कैसी है और फॉरेस्ट फायर के ऊपर आप लोगों की तैयारियां क्या है, ये मेन दो बिंदु
जी। इस वर्ष अगर देखा जाए तो मार्च के महीने तक काफी मौसम सुहावना बना हुआ था, उसके बाद अचानक से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है और देखते ही देखते तापमान जो है वो बहुत तेजी से ऊपर हो गया है। तो मौसम विभाग का इस बारे में क्या अनुमान था, क्या वो अनुमान उतने ही ठीक चल रहे हैं या अभी धीरे धीरे मौसम विभाग अपनी तैयारियों को भी पूरा करता जा रहा है और इस बारे में पूर्वानुमान भी बताता जा रहा है?
देखिए, ये तरह से मौसम विभाग अपनी जानकारियां हम लोगों का तक पहुंचाता है और पूरे देश को पहुंचाता है, ये अपने में एक तारीफ है। उनकी जो फोरकास्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मार्च में जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था अप्रैल में दिया है और जो अप्रैल से जून तक का रहा उन्होंने फोरकास्ट की या वेदर की, उसमें ये कहूंगा कि टेम्परेचर जो है अप्रैल से जून तक जो है करीब करीब नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहेगा। इसमें अगर मैं कहूं कि जो हीट वेव की जो ड्यूरेशन है वो 8 से 20 दिन के बीच में रहेगी, जबकि नॉर्मल अगर हम देखते हैं 1993 से लेकर 2023 तक को अगर हम देखते हैं उसमें तय कि नॉर्मल हीट वेव जो ड्यूरेशन है वो 4 से 6 दिन था। इस साल भीषण गर्मी के कारण जो है ये ड्यूरेशन 8 से 20 दिन तक रहेगा और इसमें मेजर स्टेट जो प्रभावित होंगे उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश स्टेट।
मौसम विभाग ने जिस तरह की पूर्वानुमान व्यक्त किए हैं और आपने कहा है वो फटीक बैठ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश इस समय चुनावों के दौर से भी गुजर रहा है, बहुत सारे राज्यों में इसी दौरान मतदान भी होगा और उसके साथ साथ आम जनता भी अब दिन के अपने कार्यकलाप करती ही है। उनको इस स्थिति में बचने के लिए कौन कौन से फौरी उपाय सुझाए गए हैं और इस बारे में जो स्वास्थ्य मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनका भी क्या उपाय सुझाए हुए हैं?
देखिए, जहां तक कल की जैसे मीटिंग की बात थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि हॉस्पिटल्स के लिए, तो हॉस्पिटल्स के लिए हम लोग उनसे हर वीक में उनसे मुलाकात होती है, बात होती है, चर्चा होती है और इसमें जो मेजर बिंदु है वो है कि हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि अपनी एम्बुलेंसेस तैयार रखें, पहला पॉइंट है उसमें। और हॉस्पिटल को हम लोगों ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी निर्देश किया है कि इससे जूझने के लिए डेडिकेटेड वार्ड भी आप अपने हॉस्पिटल में रखें। इसके साथ ही ओआरएस है और प्लस जो अदर जो स्पेशल मेडिसिन हैं उसकी भी तैयारी रखें। इसके साथ है कि मेजर चीज है कि हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारे गांव में है उसमें भी जो है जो स्टाफ है उनके ट्रेनिंग के लिए जो है उनको समुचित उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही डाटा एंट्री रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए कि इस साल हीट से प्रभावित कितने लोग हमारे हॉस्पिटल में आए हैं और कितने लोग ठीक होके गए हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल को अपने यहां भी जो है फायर फाइटिंग के लिए तैयार रहना है ताकि कहीं ओवरलोड से कहीं उनको हॉस्पिटल में अगर फायर की इंसिडेंट होती है तो उसके लिए भी अपने दूसरों को सहायता देने के साथ साथ उनको अपने को भी जो है सुरक्षित रखना है। उसके लिए बिजली है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, वाटर की इनफ जो है अपनी तैयारी अपने को उन्होंने भी रखनी है। ये ज्यादा से ज्यादा मेन बिंदु हमारे हैं।
जैसे एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, इतना बड़ी भूमिका आप मानते हैं इन सब चीज में है, और सारी चीजों का समन्वय किस तरीके से एनडीएमए कर पा रहा है?
हमारी मेन भूमिका है कि हम सारे स्टेट के साथ और सारे मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। करने का मतलब है कि हम पूरे स्टेट को साथ में लेके उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उनकी प्रिपरेशन, उनकी तैयारियां कितनी हैं, माकूल तैयारियां हैं उनके कि नहीं, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। गाइडलाइन जो हमने इश्यू की है हीट वेव के ऊपर, उसके लिए 23 स्टेट्स में, खुशी की बात यह है कि 23 राज्यों ने अपने हीट एक्शन प्लान बना रखे हैं। 200 डिस्ट्रिक्ट और सिटीज ने अपने हीट एक्शन प्लान बना लिए हैं, और जिन्होंने पहले प्लान बना रखे थे, ऐसे भी जिले हैं, सिटीज हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर अपने प्लान बनाए थे लेकिन उन्होंने अपने हीट प्लान को, हीट एक्शन प्लान को जो है अपडेट किया है, ये भी जो है हमें करना है। और इसके साथ जो है स्टेट के साथ जो रिव्यू मीटिंग हम लोग करते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं कहूं कि जैसे कि 9 जनवरी को हमने हीट वेव से पहले ही हमने जनवरी के महीने में सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मीटिंग करी, 13 से 14 फरवरी को जो हम एनुअल वर्कशॉप करते हैं सब राज्यों के साथ मिलकर के और सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर के, वो हमने विज्ञान भवन में 2 दिन की जो है हमने वो भी रखी थी। और अभी मार्च में और 4 जून को जो है हमने जो है रिव्यू मीटिंग भी सारे स्टेट के साथ लिए, हर 15 दिन के बाद हम स्टेट और मंत्रालयों से रिव्यू मीटिंग करते हैं कि उनकी तैयारियां कहां तक पहुंची है। और खुशी की बात यह है कि सारे जो एसडीएमए का जो हमने प्रिपरेशन जो अभी रिव्यू मीटिंग की थी प्रिपरेशन के ऊपर, उसमें करीब करीब हम देखते हैं कि सबने अपना काम बहुत ही अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से किया है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को एनईसी की मीटिंग जो है होम सेक्रेटरी साहब ने चेयर की थी, उसके ऊपर भी जो है सब लोगों के साथ चर्चा हुई थी कि तैयारियां किसकी की है। और अभी 11 तारीख को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को देखा है और उन्होंने भी जो है प्रिपरेशन के ऊपर पूरी मीटिंग ली। तो एनडीएमए का रोल होता है सबके साथ कोऑर्डिनेट करने का, सबके साथ समन्वय करने का, और सबके साथ जो भी इसके प्वाइंट निकल के आते हैं उन प्वाइंट्स को स्टेट के साथ शेयर करना, साझा करना। और आईएमडी की जो फोरकास्ट है, जो आईएमडी 1 से 3 दिन की, 1 से 5 दिन की और 10 दिन तक की जो फोरकास्ट वो इश्यू करते हैं, वार्निंग इश्यू करते हैं मीडियम और लॉन्ग रे जो पीरियड की जो वो है, वो भी जो है हम स्टेट के साथ शेयर करते हैं और आईएमडी को हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपने यहाँ फॉलो करता है।
जी, इसका मतलब मोटे तौर पर तो माना जाना निश्चित ही है कि बहुत पहले से तैयारियां शुरू की जाती हैं। आईसी के इस बारे में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको इस तरीके करते हैं, क्योंकि एक तो एनडीएमए की खास तौर पे अगर बात की जाए तो ये अभी फिलहाल बहुत दिनों से ये देखा जा रहा है कि इस तरह की जो पूर्व सूचनाएं हैं वो एसएमएस के माध्यम से या और भी जो संचार के साधन हैं उनसे ये सूचना आम जनता तक बहुत ही तेजी से और त्वरित गति से पहुंचती है। तो आईसी की कितनी बड़ी भूमिका है और वो क्या क्या एक्टिविटीज करती
है? आईसी की बहुत ही बड़ी भूमिका है आपदा में, अगर आप देखते हैं तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप साइक्लोन को देखें, पिछले साल देख लिए बिपरजॉय में करीब करीब 1.5 लाख लोगों को हमने सुरक्षित जगह पर पहुंचा। आईसी का कमाल था कि हम लोग उन लोगों तक पहुंच पाए 3 दिन पहले 4 दिन पहले और हम उनको निकाल करके एक सुरक्षित स्थानों पर लेके आए। लेकिन जहां तक इसमें हीट वेव के में है, मास कैंपेन जन जन तक पहुंचना, जानकारियां पहुंचना, ये हमारी जो हीट वेव के ऊपर डूज और डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम को अवॉइड करना चाहिए, इसमें मीडिया का, टीवी का, रेडियो का एक बहुत अहम रोल होता है। अगर हम अपने लोकल जो टीवी चैनल्स हैं उस पर अगर हम जो है बताते हैं कि किस समय हीट वेव का टाइमिंग क्या है और क्या क्या हमें करना है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाए, और रेडियो के माध्यम से, क्योंकि रेडियो भी लोग सुनते हैं, एफएम है और जो आपका दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इसमें भी अगर हम देखते हैं, अगर इसमें भी अगर हर 1 घंटे के बाद अगर ये प्रसारित होता रहे कि हीट वेव कितना है तो हम इससे बच सकते हैं। और पब्लिसिटी मटेरियल जो है अखबार के माध्यम से और छोटे छोटे पेपर के पंपलेट बना करके अगर हम उसमें डूज एंड डूट्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो मेरे ख्याल से ये है कि हम इस चीज पे आईसी का जो एक बड़ा रोल है और हम इस पे कहीं बेहतर काम कर सकते हैं।
जी समन्वय मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतर है, जितने भी विभाग आपस में है, चाहे वो आईसी का है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री का है, चाहे वो मौसम विभाग का है, तो एनडीएमए का समन्वय जो है वो बहुत ही बेहतर और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स हैं उनको किस तरीके से तैयार रहने के लिए किया गया है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हॉस्पिटल को साथ के साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहने के साथ साथ अपने बचाव के भी फौरी उपाय पे भी ध्यान दें, तो अस्पतालों को इसके अलावा कौन से विशेष निर्देश इस तरीके समय पे दिए गए?
देखिए वो एक तो हॉस्पिटल सेफ्टी गाइडलाइन हमने बना के दी है उनको, लेकिन हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्रालय खुद इस पे जो है उन्होंने एक विस्तृत जो है गाइडलाइन इश्यू की है जिसमें हॉस्पिटलों की सेफ्टी के लिए है, उनके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनका पीरियोडिक चेक जो है होना चाहिए, और प्लस वाटर की के अगर इनकेस, क्योंकि पिछले साल अगर आपने देखा होगा 2-3 हॉस्पिटलों में भयंकर आग की घटनाएं हुई थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये करनी है कि पानी की अधिक से अधिक सुविधा जो है हॉस्पिटल में हो, और जो आईसीयू जो इस तरह के वार्ड होते हैं उसमें स्पेशल सुविधाएं हो, और कम से कम जो फायर को डिटेक्ट करते हैं उस तरह के इक्विपमेंट अगर हमारे हॉस्पिटलों में लगे हों तो उससे भी जो है हॉस्पिटल को हमने कहा है कि उसकी भी तैयारियां रखें।
साथ ही कुछ दवाइयां या जैसे ORS के घोल हैं इस तरीके की,
ये तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को भी तैयार करना है, ORS का घोल अपने पास रखें और अपना पानी की व्यवस्था रखें, आइस पैक अपने पास रखें, कूल रूम अपने पास रखें, प्लस अगर किसी के क्रैम्प्स वगैरह अगर इस दौरान आते हैं तो उसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिसिन दी है उसकी भी प्रचुर मात्रा में लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं।
इसके साथ ही साथ जैसे इस मौसम में एक चीज और होती कि जो जंगलों में भी त्वरित आग लगने की बहुत सारी घटनाएं हुई है, अभी भी कुछ पहाड़ों के इलाकों में इस तरह की घटनाएं सुनने में आई है, इस पे रोकथाम करने के लिए भी एनडीएमए ने क्या सुझाव दिए हैं या किस तरह से इसका ध्यान रख रहा है?
जो फॉरेस्ट फायर वाला है उसको एनडीएमए हम अपने यहाँ से भी मॉनिटर करते हैं, सैटेलाइट से मॉनिटर होते हैं ये, और सारे राज्यों में जो करीब 8-10 राज्य हैं जिसमें फॉरेस्ट फायर की ज्यादा प्रॉब्लम्स है उनकी अभी जो है एक होती है छोटी आग की घटना, मध्यम आग की घटना और बड़ी आग की घटना, तो हमारा जो मेन फोकस है कि बड़ी जो ये बीच वाली छोटी वाली जो आग की घटना है इसको पहले ही काबू किया जाए ताकि वो बढ़ ना पाए, और बढ़ करके बड़ी आग न बने उसके लिए हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, सारे SDM में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके लोगों को तैयारी की हुई है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है, और इसके ऊपर जितने भी अभी तक फायर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हमारे नॉलेज में आई है उसमें कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि ये मेजर फॉरेस्ट फायर है। अगर मेजर फॉरेस्ट फायर होती है तो उसमें फिर आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अभी तक अप्रैल का महीना आ गया है अभी तक कोई इस तरह की घटना हमारे नॉलेज में नहीं आई है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट फायर के लिए सुचारू ढंग से हर संस्था जो भी इसके लिए जिम्मेवार है वो अपना काम कर रही है।
एनडीएमए कितना अब अपने आप को सक्षम मानता है कि इस तरह की चुनौतियों का वो बिल्कुल पूरी तरीके से इस पे नियंत्रण कर पा रहा है और सभी जो महत्वपूर्ण उपाय थे वो कर पा रहा है आपकी नजर में?
अमित जी देखिए तीन रोज नहीं आ रही हैं। पहले हम सोचते थे अगर हम 99 की बात करें, एक पारादीप में साइक्लोन आया था जिसमें करीब 12,000 लोगों ने जाने गंवाई हैं, और आज हम कह सकते हैं 99 से अभी तक पिछले 24 साल में हम लोगों ने 2015 से लेकर के अभी तक बिपोरजॉय, अम्पन और तावते आए हैं, नए नए यास आए हैं, नए नए तूफान आए हैं, लेकिन अगर लॉस ऑफ लाइफ अगर देखते हैं तो कहीं जीरो है, कहीं सिंगल डिजिट पे हम लोग आ रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन के ऊपर हमने काफी कुछ हद तक 90% तक हम लोगों ने विजय प्राप्त कर ली है।
राजेंद्र सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे लू से बचाव की तैयारियों और उपायों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।